एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम ज्ञान और वास्तविकता की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं।
जी हाँ, एक ऐसी यात्रा जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसे आखिर जानते कैसे हैं। क्या वो सचमुच वैसा ही है जैसा दिखता है, या हमारी समझ की कोई सीमाएं हैं?
बिल्कुल। और इस यात्रा में हमारे गाइड होंगे 20वीं सदी के एक महान विचारक बर्ट्रंड रसल और उनकी क्लासिक किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन की समस्याएं। ये किताब देखिए 1912 में लिखी गई थी, 100 साल से भी ज्यादा पहले, लेकिन आज भी इसकी बातें चौंकाने वाली और जरूरी लगती हैं।
हाँ, शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी। जिस तरह आजकल हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें, वहाँ ये समझना कि असली ज्ञान क्या है, किस पर भरोसा करें और कैसे एक आलोचनात्मक नज़रिए से चीज़ों को देखें, ये पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है।
सही कहा। रसल की ये किताब हमें वही सोचने का औजार देती है। ये हमें रटे रटाए जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है। तो चलिए रसल के साथ इस दिमागी कसरत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रसल साहब के बारे में थोड़ी बात हो जाए। ये कोई आम अकादमिक दार्शनिक नहीं थे।
बिल्कुल नहीं। बर्ट्रंड रसल वो 1872 से 1970 तक एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक जाने माने तर्कशास्त्री, गणितज्ञ, इतिहासकार, समाज सुधारक और हाँ, शांति के प्रबल समर्थक भी थे। आप उन्हें 20वीं सदी का एक बौद्धिक सुपरस्टार कह सकते हैं। बिल्कुल।
उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सिर्फ दर्शन और गणित में उनके योगदान के लिए नहीं, बल्कि उनके मानवतावादी विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में उनके लेखन के लिए भी था। गणित में तो उनका काम, खासकर वो एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, वो तो एक मील का पत्थर माना जाता है।
हाँ, वो गणित की पूरी इमारत को तर्क की नींव पर खड़ा करना चाहते थे। बड़ा महत्वाकांक्षी काम था वो। इसके अलावा वे विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी के संस्थापकों में से थे। ये दर्शन की वो धारा है जो भाषा की स्पष्टता और तर्क पर बहुत जोर देती है। और रसल की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वे इतने गहरे और मुश्किल विषयों पर सोचने के बावजूद अपनी बात को बहुत ही साफ और सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचा सकते थे।
और यही बात दर्शन की समस्याओं को खास बनाती है। ये किताब उन्होंने फिलॉसफी के प्रोफेसरों के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि हम जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए लिखी थी जो दुनिया और अपने ज्ञान के बारे में बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं।
हाँ, वे मुश्किल सवालों से घबराते नहीं थे, जैसे वास्तविकता क्या है, हमारे जानने की हद क्या है, क्या न्याय या सुंदरता जैसे विचारों का भी अपना कोई वजूद होता है। इन सबको वे तर्क की कसौटी पर कसते थे, और वो भी ऐसी भाषा में जो हमें डराती नहीं बल्कि सोचने के लिए उकसाती है। उनके लिए दर्शन सिद्धांतों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत गतिविधि थी, दिमाग को पूर्वाग्रहों से आजाद करने का एक तरीका।
तो ये किताब किस बारे में है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये दर्शन की कुछ बुनियादी समस्याओं या सवालों को उठाती है, खास तौर पर ज्ञान से जुड़े सवाल, जिसे ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं।
हाँ।
और वास्तविकता की प्रकृति से जुड़े सवाल, जिसे तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं।
जी हाँ, और रसल का मकसद हमें डराना या उलझाना नहीं है, बल्कि हमें उन गहरी अनिश्चितताओं से रूबरू कराना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के ठीक नीचे छिपी होती हैं। वो कहते हैं ना, समटाइम्स द मोस्ट फेमिलियर थिंग्स आर द स्ट्रेंजर्स। ये किताब हमें उन्हीं परिचित चीजों पर सवाल उठाना सिखाती है।
और इसकी शुरुआत वे एक बहुत ही आम चीज से करते हैं, एक मेज। सोचिए, आपके सामने एक मेज रखी है, आप उसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, आपको लगता है आप उसे जानते हैं, लेकिन रसल पूछते हैं, आप असल में क्या जान रहे हैं? उसका रंग, वो तो रोशनी के बदलने से बदल जाता है। उसकी बनावट, वो तो अलग अलग जगह से छूने पर अलग लगती है। उसका आकार, वो भी देखने के कोण से बदलता है।
ये जो बदलते हुए एहसास हैं, रंग, बनावट, आकार, इन्हें रसल आभास या सेंस डेटा कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिनका हमें सीधा अनुभव होता है, लेकिन असली मेज अगर कोई है तो वो इन आभासों के पीछे है। हम सीधे असली मेज को नहीं बल्कि इन आभासों को जानते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि इन सब का कारण एक ठोस बाहरी मेज है।
यहीं से पूरी किताब का रोमांच शुरू होता है। अगर हमें सिर्फ अपने इंद्रिय अनुभवों का ही सीधा ज्ञान है तो हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमारे बाहर एक असली दुनिया मौजूद है भी या नहीं? क्या पता ये सब एक लंबा सपना हो, जैसे वो मैट्रिक्स मूवी थी।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती शक हमें ज्ञान और यथार्थ के बारे में गहरे सवालों की ओर ले जाता है। रसेल हमें कोई फाइनल जवाब देने का वादा नहीं करते, बल्कि वो हमें सोचने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। किताब का असली मकसद हमारी आलोचनात्मक सोच को जगाना और दिखाना है कि ये सवाल क्यों मायने रखते हैं।
चलिए अब रसेल के साथ इस सोच की यात्रा पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किताब के अलग अलग हिस्सों में वे हमें किन मुख्य पड़ावों से ले जाते हैं? हम अध्याय दर अध्याय नहीं चलेंगे, बल्कि उनके मुख्य तर्कों और सवालों के सफर को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, तो सबसे पहला पड़ाव तो यही है, हमारी इंद्रियों का हिलता हुआ आधार। मेज वाले उदाहरण से रसेल ने यह दिखा दिया कि जिसे हम देखना या छूना कहते हैं, वो असल में बाहरी चीज का सीधा ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे अपने इंद्रिय डेटा का ज्ञान है। रंग, आवाज, गंध, ये सब चीजें बाहर वैसी नहीं हैं जैसी हमें महसूस होती हैं। ये हमारे दिमाग और इंद्रियों की प्रतिक्रियाएं हैं। तो पहला सवाल यही खड़ा होता है, हम अपनी इंद्रियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं?
ये सोचना ही थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब मैं जो ये लाल रंग देख रहा हूँ वो बाहर लाल नहीं है, वो मेरे दिमाग का बनाया हुआ एहसास है,
रसेल कहते हैं। हाँ, और देखिए, विज्ञान भी काफी हद तक यही बताता है। भौतिक दुनिया परमाणुओं और ऊर्जा तरंगों से बनी है, जिसमें रंग या आवाज जैसी चीजें उस तरह नहीं होती जैसे हम अनुभव करते हैं। तो हम सीधे तौर पर बहुत कम जानते हैं। हमारा ज्यादातर ज्ञान इन इंद्रिय संकेतों के आधार पर बनाया गया एक मॉडल या अनुमान है।
बिल्कुल, और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे बाहर कोई दुनिया है भी? अगर हमारी इंद्रियां हमें सीधे बाहरी दुनिया नहीं दिखाती, तो क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि यह दुनिया सच में मौजूद है, या ये सब हमारे मन का ही खेल है?
हाँ, इसे प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म कहते हैं, जिसका एक मशहूर समर्थक बिशप बर्कले थे। उनका कहना था, होना मतलब माना जाना, ऐसे एस्ट पर चीपी, यानी चीजें तभी तक हैं जब तक कोई मन उन्हें सोच या देख रहा है।
रसेल इस आइडियलिज्म की आलोचना करते हैं। वे मानते हैं कि किसी चीज को जानने की क्रिया और वो चीज जिसे जाना जा रहा है, ये दो अलग बातें हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें मेज को जानने के लिए उसे देखना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेज खुद हमारे देखने पर निर्भर है।
सही है।
रसेल कहते हैं कि बाहरी दुनिया के अस्तित्व को तार्किक रूप से साबित करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये हमारे अनुभवों की सबसे सरल और सबसे अच्छी व्याख्या है।
अच्छा,
कैसे?
वो एक बिल्ली का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक बिल्ली कमरे में एक तरफ से अंदर आती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। यह मानना ज्यादा तर्कसंगत है कि बिल्ली बीच में भी मौजूद थी, भले ही हमने उसे हर पल ना देखा हो, बजाय ये मानने के कि वो बीच में गायब हो गई थी और फिर प्रकट हो गई। तो बाहरी दुनिया का अस्तित्व एक तरह का जरूरी सहज विश्वास है, जिस पर हमारा सारा जीवन और विज्ञान टिका है।
ठीक है, मान लिया कि बाहरी दुनिया है और हमारी इंद्रियां हमें उसके बारे में कुछ संकेत देती हैं। अब तीसरा सवाल आता है, हम चीजों को जानते कैसे हैं? क्या जानने के अलग अलग तरीके हैं? यहाँ रसेल अपना एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं, परिचय से ज्ञान, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, और वर्णन से ज्ञान, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन।
परिचय से ज्ञान वो है जो हमें सीधी और तुरंत होता है, जैसे अभी मुझे अपनी कुर्सी का दबाव महसूस हो रहा है, ये सीधा परिचय है, या मुझे अपनी यादें, अपनी भावनाएं, इनका सीधा एहसास है, मैं अपनी चेतना से सीधे परिचित हूँ, ये ज्ञान का सबसे बुनियादी रूप है।
दूसरी तरफ वर्णन से ज्ञान अप्रत्यक्ष होता है, हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनका हमें सीधा अनुभव नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ विवरण जानते हैं जो अंततः किसी के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैं इस विवरण को जानता हूं।
हाँ, रसेल कहते हैं कि बाहरी भौतिक वस्तुओं जैसे वो मेज, दूसरे लोगों के दिमाग या ऐतिहासिक घटनाओं का हमारा ज्यादातर ज्ञान वर्णन द्वारा ही होता है, जो कहीं ना कहीं किसी के परिचय यानी सीधे अनुभव पर आधारित होता है।
ये फर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि
हाँ, ये दिखाता है कि हमारा सारा जटिल ज्ञान आखिरकार प्रत्यक्ष अनुभव की नींव पर ही टिका होना चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं।
बिल्कुल, लेकिन ज्ञान की इस इमारत में एक और बड़ी दरार है जिसकी तरफ रसल ध्यान दिलाते हैं। यह है चौथा पड़ाव। क्या हम भरोसे के साथ भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं?
हाँ, आगमन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, जिसे दार्शनिक डेविड ह्यूम ने मशहूर किया था।
आगमन का मतलब है अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। हम रोज देखते हैं कि सूरज पूरब से उगता है तो हम मान लेते हैं कि कल भी उगेगा।
हाँ बिल्कुल।
हमने देखा है कि खाना खाने से भूख मिटती है तो हम मानते हैं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। पूरा विज्ञान इसी सिद्धांत पर काम करता है कि प्रकृति के नियम एक जैसे रहेंगे।
लेकिन रसेल और ह्यूम पूछते हैं, हम इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा? सिर्फ इसलिए कि सूरज अब तक रोज उगता आया है, ये इस बात की गारंटी तो नहीं कि वो कल भी उगेगा। हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक नहीं हुआ। हम आगमन के सिद्धांत को न तो तर्क से सिद्ध कर सकते हैं,
क्योंकि भविष्य तार्किक रूप से अलग हो सकता है।
हाँ, और न ही अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि अनुभव बताता है कि आगमन काम करता है, खुद आगमन का ही इस्तेमाल करना है, एक गोलमोल तर्क हो गया ये तो।
तो फिर क्या करें, विज्ञान कैसे चलेगा?
तो रसेल कहते हैं कि हमें आगमन के सिद्धांत को एक बुनियादी प्राथमिकता विश्वास, ए प्रायोरी बिलीफ के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। ये साबित नहीं हो सकता, लेकिन इसके बिना विज्ञान और रोजमर्रा का जीवन असंभव हो जाएगा। ये एक तरह का तर्कसंगत विश्वास है जिसे हमें मानना पड़ता है, हालांकि हमेशा थोड़ा अनिश्चित रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान भी पूरी तरह निश्चित नहीं, बल्कि संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है।
बाप रे, ये तो विज्ञान की नींव पर ही सवाल उठा देता है। अच्छा, अब एक आखिरी बड़े सवाल पर आते हैं जिसके बारे में रसेल बात करते हैं। क्या अमूर्त विचारों का भी अपना अस्तित्व होता है, जैसे गणित के सिद्धांत 2+2=4, या तर्क के नियम ए ही है, या फिर न्याय, सफेदी, बराबरी जैसे विचार?
हाँ, ये वो ज्ञान है जिसे रसेल प्राथमिकता ज्ञान यानी एप्रियोरी नॉलेज कहते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो हमें अनुभव से पहले या अनुभव से स्वतंत्र रूप से मालूम होता है। हमें ये जानने के लिए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। रसेल पूछते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आता है, क्या ये सिर्फ हमारे मन की उपज है?
और रसेल का जवाब है नहीं। वे मानते हैं कि ये अमूर्त अवधारणाएं, जिन्हें वे सार्वभौमिक कहते हैं, सिर्फ हमारे दिमाग भी नहीं है, बल्कि उनका अपना एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है।
कैसे?
जैसे दुनिया में बहुत सारी सफेद चीजें हैं, पर्टिकुलर्स, लेकिन सफेदी, व्हाइटनेस का गुण या आइडिया अपने आप में एक सार्वभौमिक है। इसी तरह न्याय या दोस्ती जैसे विचार सिर्फ अलग अलग न्यायपूर्ण कामों या दोस्तों में ही नहीं होते, बल्कि एक अमूर्त स्तर पर भी मौजूद हैं।
अच्छा, प्लेटो की तरह रसेल मानते हैं कि इन सार्वभौमिकों की अपनी एक अलग समय और स्थान से बरे दुनिया है। हम इन्हें अपने अनुभव से अमूर्त करके जानते हैं, मतलब कई सफेद चीजों को देखकर हम सफेदी के सामान्य विचार तक पहुंचते हैं और उससे एक तरह से परिचित हो जाते हैं। तर्क और गणित का ज्ञान इन्हीं सार्वभौमिकों के आपसी संबंधों का ज्ञान है, और इसीलिए वो अनुभव पर निर्भर नहीं करता।
वाह, तो रसेल हमें हमारी आम समझ की दुनिया से उठाकर संदेह, संभावनाओं और अमूर्त विचारों की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। अगर हम इस पूरी यात्रा से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालना चाहें तो वो क्या होंगे?
हाँ, कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला और सबसे बुनियादी है आभास और वास्तविकता का फर्क। हम दुनिया को सीधे नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और दिमाग के फिल्टर से जानते हैं। ये हमें भोली यथार्थवादिता, यानी ये मान लेना कि दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी दिखती है, पर सवाल उठाने को मजबूर करता है।
हाँ, जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे किसी की प्रोफाइल देखते हैं, वो उसका आभास है, असलियत शायद कुछ और हो। रसेल हमें हर अनुभव पर थोड़ा शक करने को कहते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, निश्चितता की तलाश और उसकी सीमाएं। रसेल बार बार दिखाते हैं कि जिस तरह की पक्की निश्चितता हम चाहते हैं, वो बहुत कम चीजों के बारे में मिल सकती है। ज्यादातर ज्ञान संभाव्यता पर आधारित है। इससे हमें बौद्धिक विनम्रता सीखने को मिलती है, ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं और दूसरों के नजरिए को सुनने के लिए तैयार रहना।
ये तो बहुत जरूरी है आजकल, जहां हर कोई अपने विचारों को लेकर बहुत कट्टर है।
सही कहा। तीसरा, प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व। रसेल का परिचय और वर्णन का फर्क हमें याद दिलाता है कि सारा ज्ञान आखिरकार जमीनी हकीकत यानी सीधे अनुभव पर टिका होना चाहिए। सिर्फ किताबी बातें या सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलता। जैसे गाड़ी चलाने सीखने के लिए किताब पढ़ना काफी नहीं, खुद चलाना पड़ता है।
चौथा, विज्ञान की नींव और आगमन में तर्कसंगत विश्वास। यह समझना कि विज्ञान जैसा शक्तिशाली औजार भी एक बिना साबित हुई धारणा पर टिका है, हमें विज्ञान की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक जरूरी कामकाजी विश्वास है।
और पांचवा
शायद सबसे गहरा संदेश, अनिश्चितता की मुक्तिदायक शक्ति। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर रसेल का मानना है कि दर्शन का असली मूल्य उसके दिए जवाबों में नहीं बल्कि उसके उठाए सवालों में है। जब हम स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं तो हम पूर्वाग्रहों, रिवाजों के अत्याचार और कट्टरता की जंजीरों से आज़ाद होते हैं। हमारा मन बड़ा होता है, हमारी कल्पना खुलती है और हम दुनिया को ज्यादा आश्चर्य से देख पाते हैं।
सच में ये संदेश बहुत शक्तिशाली हैं। रसेल की किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बड़े सधेवे अंदाज में कहती हैं। कुछ खास विचारों या पंक्तियों पर गौर करें।
जरूर। एक तो किताब की शुरुआत में ही है जो पूरी दार्शनिक खोज की भावना को पकड़ती है। क्या दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान है जो इतना निश्चित हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस पर संदेह न कर सके? ये प्रश्न, जो पहली नज़र में कठिन नहीं लग सकता है, वास्तव में पूछे जा सकने वाले सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। ये पंक्ति सीधे पाठक के भरोसे को चुनौती देती है और सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, एकदम शुरुआत में झटका लगता है। एक और विचार जो आभास और वास्तविकता के भेद को उजागर करता है, वो मेज वाले उदाहरण से निकलता है। इस प्रकार, जो हमें तुरंत ज्ञात होता है वह स्वयं मेज नहीं है बल्कि इंद्रिय डेटा, रंग, आकार, कठोरता आदि। भौतिक वस्तु एक अनुमान है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हम दुनिया के निर्माता भी हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। हमारा दिमाग इन संकेतों से दुनिया का नक्शा बनाता है।
बिल्कुल।
और तीसरा, जो दर्शन के असली मूल्य पर जोर देता है, वो किताब के आखिरी हिस्से से है। दर्शन का अध्ययन उसके प्रश्नों के निश्चित उत्तरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न संभावनाओं की हमारी कल्पना को समृद्ध करते हैं और उस हठधर्मी आश्वासन को कम करते हैं जो मन को जांच की अटकलों से रोकता है। सबसे बढ़कर, दर्शन द्वारा विचार किए गए ब्रह्मांड की महानता के माध्यम से मन भी महान बनता है।
ये दर्शन का एक मानवतावादी बचाव है। इसका फायदा दिमाग को खोलने और बड़ा बनाने में है।
ये बातें सुनने में काफी गहरी और शायद थोड़ी अमूर्त लगें, लेकिन क्या इनके कुछ व्यवहारिक उपयोग भी हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में?
बिल्कुल हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा है आलोचनात्मक सोच का विकास। रसेल को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान खबरों, विज्ञापनों, नेताओं के वादों या व्हाट्सएप पर आए मैसेज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा। दिमाग में अपने आप सवाल उठने लगते हैं, इसका क्या सबूत है? क्या ये पूरी कहानी है? कहीं कोई पूर्वाग्रह तो नहीं?
दूसरा फायदा है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। जब हमें ये एहसास होता है कि एक मामूली सी मेज का अस्तित्व भी पूरी तरह पक्का नहीं, तो हम अपने ज्ञान की सीमाओं को समझने लगते हैं। इससे बहस में या दूसरों से बात करते हुए हम ज्यादा खुले दिमाग वाले बनते हैं, अपनी गलती मानने को तैयार होते हैं और मुझे सब पता है वाला रवैया से बचते हैं।
सही कहा। तीसरा, अनिश्चितता के बीच बेहतर फैसले लेना। जिंदगी के ज्यादातर फैसले, करियर चुनना, निवेश करना, रिश्ते बनाना, अधूरी जानकारी और अनिश्चितता के माहौल में ही लेने पड़ते हैं। रसेल का विश्लेषण हमें सिखाता है कि कैसे सबूतों को तौलें, अलग अलग संभावनाओं का अंदाजा लगाएं और सबसे तर्कसंगत विकल्प चुनें, ये जानते हुए कि नतीजा पक्का नहीं है। यह हमें लकवाग्रस्त होने से बचाता है।
चौथा, अलग अलग नजरियों की कद्र करना। ये समझना कि हर किसी का अनुभव और दुनिया को देखने का तरीका उनके अपने इंद्रिय डेटा, उनकी पृष्ठभूमि और उनके अनुमानों पर आधारित है, हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बनाता है।
हाँ।
हम समझ पाते हैं कि क्यों दो समझदार लोग एक ही चीज पर अलग राय रख सकते हैं। इससे टकराव कम हो सकता है और संवाद बेहतर।
बिल्कुल। और एक और बात, प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना। रसेल सिखाते हैं कि सिर्फ मंजिल या अंतिम जवाब तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान की खोज की यात्रा, सवाल पूछने का रोमांच, नई चीजें सीखने की प्रक्रिया, इनका अपना मजा और अपना मूल्य है। ये हमें जिंदगी भर सीखने वाला बनाता है।
तो इस पूरी चर्चा से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया और हमारा ज्ञान दोनों ही हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा, हैरान करने वाले और अनिश्चित हैं। हमें इंसानी तर्क की ताकत का पता चलता है, लेकिन साथ ही उसकी सीमाओं का भी गहरा एहसास होता है। ज्ञान एक ठोस इमारत नहीं बल्कि एक लगातार बनने और सुधरने वाला ढांचा है।
और मेरे लिए सबसे स्थायी विचार ये है कि असली बौद्धिक आज़ादी इसी अनिश्चितता को स्वीकार करने और गले लगाने में है। हर चीज़ पर सवाल उठाकर हम डरपोक या निष्क्रिय नहीं बनते, बल्कि हम बिना सोचे समझे मान ली गई बातों, पूर्वाग्रहों और दूसरों की थोपी हुई राय की गुलामी से आज़ाद होते हैं। रसेल हमें दिखाते हैं कि फ़लसफ़ा कोई सूखी, अकादमिक चीज़ नहीं, बल्कि सोचने की एक जिंदा, ज़रूरी गतिविधि है जो हमारे दिमाग को खोलती है और ज़िंदगी को ज़्यादा मायने देती है। उनकी यही क्षमता गहरे सवालों को साफ और सुलभ भाषा में पेश करने की इस किताब को आज भी इतना प्रासंगिक और पढ़ने लायक बनाती है।
खा सकते हैं। तो हमारे और कौन से ठोस विश्वास या मान्यताएं हैं जिन्हें शायद हमें दोबारा जांचने की जरूरत है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए ओकित्रो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।